हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रणविजय से बहस करके वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था। अब दरवाज़ा खोलने पर रणविजय ने अपनी गर्दन मोड़ते हुए बोला था कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि झलक कहीं न कहीं अंदर ही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सिद्धार्थ ने उसके साथ कहीं कुछ कर दिया हो। ये सोचकर अनामिका थोड़ी डर गई थी, लेकिन रणविजय के चेहरे पर गुस्सा उभर आया था, क्योंकि वो झलक और सिद्धार्थ को एक साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। और उसे सबसे पहले इस बात के बारे में पता लगाना था कि आखिरकार सिद्धार्थ कहाँ है, क्योंकि सिद्धार्थ और झलक को एक साथ वो किसी भी हाल में देख नहीं सकता था। सिद्धार्थ के बारे में पता लगाने के लिए उसने सीधा दादी को कॉल किया। बातों बातों में उसने सिद्धार्थ के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन दादी ने बहुत साफ बता दिया था कि बेटा, अभी तक ना तो सिद्धार्थ और ना ही झलक, दोनों में से कोई भी वापस नहीं आया है। लगता है कि कहीं फंस गया होगा। सिद्धार्थ का मूड कब क्या हो जाए, इसका कुछ पता नहीं होता। हो सकता है कि वो झलक को अपने अपार्टमेंट में ले गया हो। वैसे भी वो पहले अपार्टमेंट में ही रहा करता था। ये सुनकर तो रणविजय के माथे पर बल पड़ गए थे और वो मन ही मन बोल उठा था, सिद्धार्थ खुराना, अगर तूने झलक को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भले ही तू पहले उसके साथ कुछ भी कर चुका हो, लेकिन अब उसे छूने का तुझे कोई हक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ऐसी बातें सुनकर अनामिका को काफ़ी बुरा लग रहा था और वो मन ही मन सोच रही थी कि ये इंसान वाकई में झलक से प्यार करता है या असल में उसकी परवाह करता है। वही अनामिका अपने प्यार को इस तरह दिखाना भी नहीं चाहती, इसीलिए उसने शायद अपने प्यार को दोस्ती का नाम दे रखा है। और जो लड़की उससे बेइंतहा नफरत करती है, वो भी इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बदले की आग में उसके करीब आना चाहता है, ना कि इसलिए कि वो उससे प्यार करता है। फिलहाल अनामिका हंस पड़ी थी। वैसे भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रणविजय उसकी जिंदगी में है या नहीं है। उसके लिए इस वक्त सबसे पहले उसका मकसद जरूरी था। फिलहाल अब रणविजय ने जल्दी जल्दी पूरे के पूरे ऑफिस में देखना शुरू कर दिया था। सब लोग एक साथ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने अलग अलग देखने का फैसला किया। वहीं रौनित को भी रणविजय ने फोन कर दिया था कि फटाफट से ये बताओ कि सिद्धार्थ खुराना कहाँ है। अब जैसे ही रौनित ने बताया कि सिद्धार्थ किसी जरूरी काम से ऑफिस से बहुत जल्दी ही निकल चुका था, तो ये सुनकर रणविजय और भी ज्यादा चौंक गया था। फिलहाल अब देर ना करते हुए फटाफट पूरे ऑफिस को छानने के बाद रणविजय ने एक बार फिर रोनित को फोन कर दिया। अब रणविजय का फोन देखकर रोनित थोड़ा सा घबरा गया और घबराते हुए बोला था कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं, बस इतना पता है कि वो मुझसे बात करना नहीं चाहते थे। अब रोनित की बात सुनकर रणविजय का खून तेजी से को दौड़ पड़ा था, तो उसने जल्दी से अपने आदमी को सिद्धार्थ के अपार्टमेंट पर भेज दिया था कि जाकर वहां पता लगाया जाए कि कहीं वो झलक को लेकर वहां तो नहीं चला गया, लेकिन वहां से भी नाकामी ही हाथ लगी थी। और रणविजय का सिर पूरी तरह से चकरा गया था। वो पागल सा हो गया था और पूरी तरह से बेचैन हो उठा। वो सोचने लगा था कि ये उसी की गलती थी। उसे झलक पर खुद बखुद नजर रखनी चाहिए थी। उसे अकेले कहीं जाना ही नहीं देना चाहिए था और हमेशा उसका ध्यान रखेगा। कहीं ना कहीं कितने ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। वहीं रौनित भी थोड़ा सा हैरान और परेशान हो गया था। वो सोचने लगा था कि आखिर सिद्धार्थ सर कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि रणविजय ने सिर्फ फोन करके रौनित से सिद्धार्थ के बारे में पूछा था, झलक के बारे में नहीं पूछा था, इसीलिए उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ पर था, झलक पर नहीं। अब फिलहाल रणविजय लगातार सिद्धार्थ के फोन पर फोन करने लगा था, लेकिन सिद्धार्थ का फोन उसी के केबिन में रखा हुआ था, जो कि वाइब्रेशन मोड पर था, जिसकी वजह से उसकी रिंगटोन कोई भी नहीं सुन पा रहा था। अब सबकी परेशानियों का कोई ठिकाना नहीं था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों को ढूंढने कहाँ जाना चाहिए। वहीं अनामिका को भी झलक की चिंता होने लगी थी। दूसरी ओर स्टोर रूम में अब सिद्धार्थ ने जैसे ही ये देखा कि इस वक्त झलक पूरी तरह से शांत हो गई है और कुछ भी नहीं बोल रही है, तो उसे थोड़ी सी हैरानी हुई। वो तुरंत उसके पास गया और उसकी ओर देखकर बोला, मुझे लगता है तुम्हें इस स्टोर रूम में रहने का कुछ ज्यादा ही शौक है, इसीलिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से निकलने की, लेकिन तुम तो यहाँ से निकलने की कोई कोशिश ही नहीं कर रही हो। अरे एटलीस्ट मदद तो कर सकती हो, क्या तुम्हें पता है कि दिमाग नाम की भी कोई चीज होती है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं, तुम एक नंबर की गवार हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो तुम्हें कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ से निकलने का हमें रास्ता खोजना चाहिए। जैसे ही सिद्धार्थ ने कटीले शब्दों का इस्तेमाल किया, झलक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब तो सिद्धार्थ को थोड़ी सी हैरानी हुई कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी ये लड़की बिल्कुल चुप है। क्या हो गया है, कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ सोचते हुए वो तुरंत झलक के करीब गया और जल्दी ही ना चाहते हुए भी उसने उसके गाल थपथपाने शुरू कर दिए थे, लेकिन झलक तो पूरी तरह से फ्रोजन थी, बेहोश थी, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब ये देखकर तो सिद्धार्थ अचानक कांपती आवाज में बोला था, झलक झलक देखो, अगर तुम इस तरह मुझे परेशान करने के लिए नाटक कर रही हो तो मैं बता दूं कि तुम बहुत बेकार कर रही हो। इस तरीके से मुझे परेशान करने का नाटक मत करो। तुम जानती हो कि इस वक्त मैं किस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। लेकिन ये सुनकर भी झलक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब तो सिद्धार्थ को किसी अनहोनी की आशंका नजर आने लगी थी। देर न करते हुए वो तुरंत अपने सिर पर हाथ मार लिया था और मन ही मन बोला था कि इस लड़की को बीमार पड़ने के लिए भी यही जगह मिली थी। अब वो पूरी तरह से बेचैन हो चुका था, लेकिन जल्दी ही उसकी नज़र टेबल पर रखी पानी की बोतल पर गई थी। देर न करते हुए उसने फटाफट पानी की बोतल उठाई और उसके छींटे झलक के मुंह पर मारे थे, फिर थोड़ा सा पानी झलक को पिलाया। अब झलक थोड़ी थोड़ी सेंस में वापस आने लगी थी। जैसे ही उसने देखा कि सिद्धार्थ उसके बेहद करीब खड़ा हुआ है, उसने तुरंत उसे खुद से दूर किया और घबराई हुई आवाज में बोली, आप मेरे इतने करीब क्या कर रहे हैं? कुछ ना खाने पीने की वजह से झलक की आवाज काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। वो कमजोरी की हालत में सिद्धार्थ को देखकर ही बातें कर रही थी। अब सिद्धार्थ छल्ला कर बोला था, जस्ट शट अप। एक तो तुम यहाँ पर हो, ऊपर से तुम्हें बेहोश होने के लिए क्या यही जगह मिली थी? तुम कहीं और जाकर बेहोश नहीं हो सकती थी? समझ में नहीं आता कि कोई इतनी इरिटेटिंग कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम झलक नहीं, इरिटेटिंग गर्ल होना चाहिए, सिद्धार्थ ने झलक का हाथ खींचते हुए गुस्से में कहा था। लेकिन झलक का गुस्सा भी अब काबू से बाहर हो रहा था। वो अब भी सिद्धार्थ की बातों का जवाब नहीं दे रही थी और उसे याद दिला रही थी कि उसने उसे मनहूस कहा था, इसीलिए वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। सिद्धार्थ ने उसके दिल को काफी हद तक ठेस पहुंचाई थी। अब झलक ने थोड़ी गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए, अगर मैं इतनी ही इरिटेटिंग हूँ और आपने मुझे अपनी भाषा में मनहूस कहा है, तो आप मेरे साथ कर क्या रहे हैं? अरे, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तलाक दे दो और यहाँ से रवाना कर दो। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चली जाऊंगी। गांव जाकर कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। कम से कम मुझे आपकी तरह दोहरे चेहरे वाले लोगों को तो नहीं देखना पड़ेगा।
और वैसे भी मिस्टर खुराना, मुझे आपके जैसा पप्पू इस दुनिया में कोई लगता ही नहीं है, क्योंकि मिस्टर खुराना, आप वो इंसान हैं जिसे जो कोई जो कह दे आप वही मान लेते हैं। आपके पास खुद का कॉमन सेंस तो है ही नहीं। अब झलक ने जिस तरह से खड़े खड़े सिद्धार्थ की बेइज्जती की थी, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सीधा झलक का कंधा पकड़कर झटके से उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया था। झलक सीधे जाकर बुक की शेल्फ से टकरा गई थी, जिससे कई किताबें पूरी तरह से नीचे गिर गई थीं। वो शेल्फ भी झलक के ऊपर गिरने ही वाली थी, जिससे उसकी जान तक जा सकती थी। लेकिन